ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। देश का समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सकारात्मक होने की अर्थ मंत्रालय ने दी जानकारी। बजट के आकार 10% घटाने के बावजूद आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य यथावत। अर्थमंत्री डॉ युवराज खतिवाड़ा ने किया स्पष्ट। रेडियोधर्मी पदार्थ का नियमन संबंधी विधेयक 2076 प्रतिनिधि सभा से किया पारित। और सिंगापुर के एक बैंक में कार्यरत कर्मचारी में कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद बैंक में कार्यरत 300 कर्मचारियों को दी गई छुट्टी। अब समाचार विस्तार से। अर्थमंत्री डॉ युवराज खतिवाड़ा ने कहा कि पिछले 2 सालों से निरंतर सुधार के प्रयास से देश का समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सकारात्मक बनते जा रहा है। चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 के बजट का प्रथम अर्धवार्षिक समीक्षा के विषय में जानकारी देने के लिए आज अर्थ मंत्रालय ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्थमंत्री डॉ खतिवाड़ा ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि दर उच्च होने के साथ ही मुद्रा स्फीति निश्चित सीमा के भीतर है और व्यापार घाटा में भी सुधार आया है। अर्थमंत्री डॉ खतिवाड़ा ने कहा कि सरकार ने चालू आर्थिक वर्ष के बजट के आकार को 10% घटाया है। इसके साथ ही अब बजट का आकार 13.85 अरब कायम हुआ है। उन्होंने आगे ये स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही बजट के आकार को घटाया गया हो लेकिन आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य यथावत ही है। गौरतलब है कि सरकार ने चालू वर्ष के लिए 15.32 अरब 96 करोड़ 91 लाख रुपया का बजट विनियोजन किया था। प्रतिनिधि सभा की बैठक ने रेडियोधर्मी पदार्थ के नियमन संबंधी विधेयक 2076 को पारित किया है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल ने इस विधेयक को बैठक में प्रस्तुत किया था। बैठक में कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी ने बीज संरक्षण पहला संशोधन विधेयक संबंधी समिति का प्रतिवेदन 2076 पेश किया था। इसी तरह बैठक में गृहमंत्री राम बहादुर थापा ने कारागार विधेयक 2076 पेश किया था। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने समाज में विद्यमान जातीय छुआछूत और विभेद का अंत करने की ओर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक फागुन 2 गते शुक्रवार दोपहर 2 बजे के लिए बुलाई गई है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल ने कहा कि मदन भंडारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से विज्ञान और प्रविधि पर आधारित शिक्षा प्रदान करेगी। प्रतिनिधि सभा की शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति की आज की बैठक में मदन भंडारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना करने के लिए बने विधेयक के ऊपर विचार विमर्श करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश के अन्य विश्वविद्यालय से ये विश्वविद्यालय अलग होगा और विश्व के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय विद्यालयों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी समक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने आज आयोग के बीते आर्थिक वर्ष 2075-76 का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में प्रतिवेदन ग्रहण करते हुए राष्ट्रपति भंडारी ने चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को सहभागी कराने की बात पर जोर दी। राष्ट्रपति भंडारी ने चुनाव के जरिए लोकतंत्र को संस्थागत करने के लिए आयोग द्वारा निभाए गए भूमिका की सराहना की। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के मुताबिक चीन में रहे नेपाली को नेपाल लाकर क्वारेंटाइन क्षेत्र में रखकर किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण न फैलने देने के लिए सरकार उच्च सतर्कता अपनाकर काम कर रही है। मंत्रालय द्वारा आज जारी किए गए विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि गृह रक्षा परराष्ट्र शहरी विकास संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी समेत के समन्वय में क्वारेंटाइन स्थल को आवश्यक सुरक्षा और निगरानी में रखा गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता महेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि नेपाल में सिर्फ एक व्यक्ति में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। चीन में रहे नेपाली को जल्द ही नेपाल लाने की तैयारी सरकार कर रही है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते। आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा कुमारी अर्याल ने बताया कि चीन में रहे नेपाली विद्यार्थियों को लाने के लिए अंतिम तैयारी हो रही है। फ्रेंड्स ऑफ सिल्क रोड ट्रांस हिमालय डेवलपमेंट सेंटर द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री अर्याल ने नोवल कोरोना वायरस के विषय में किसी भी प्रकार का नकारात्मक हल्ला न करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि चीन की समन्वय में नेपाली विद्यार्थियों को सुरक्षित लाने के लिए अंतिम तैयारी हो चुकी है। कार्यक्रम में नेपाल के लिए चीनी राजदूत हो यांगछी ने बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण सीमा पार न फैलने देने के लिए चीनी सरकार ने उच्च सतर्कता अपनाने की पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी संक्रमितों की संख्या में आज कमी आ रही है और दैनिक 5000 चीनी नागरिकों को इलाज के बाद घर भेजा जा रहा है। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार ने पड़ोसी देश चीन में फैले कोरोना वायरस के संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए उच्च सतर्कता अपनाने की जानकारी दी गई है। प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संभावित जोखिमों को लक्षित करते हुए सीमा नाकों और प्रादेशिक अस्पतालों में हेल्थ डेस्क की स्थापना करने की जानकारी दी। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ग्यवाली ने आज प्रहरी प्रधान कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। गृह मंत्रालय में आयोजित एक समारोह बीच गृह सचिव महेश्वर न्यूपाने द्वारा दर्जानी चिन्ह प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने पदभार ग्रहण किया। बता दें कि मंत्रिपरिषद की कल की निर्णय के अनुसार नायब महानिरीक्षक से प्रहरी महानिरीक्षक में पदोन्नति की गई। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अंतर्गत पर्वत खंड के पातीचौर बाजार क्षेत्र में 4 लेन की सड़क निर्माण की जाएगी। स्थानीयों के आग्रह के बाद मोदी 2 देवपुर और मोदी 5 बाजुंग क्षेत्र में 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। इसकी जानकारी मध्य पहाड़ी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वत ने दी। नेपाली सेना के ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से एक सैनिक की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। हादसे में सुबजगढ़ में कार्यरत हेटौड़ा के जमदार यादवराज भड़ेल की मौत हो गई। इसकी जानकारी 19 नंबर वाहिनी अड्डा तुलसीपुर के वाहिनी पति सुशील भंडारी ने दी। घायलों का इलाज काठमांडू स्थित छावनी हॉस्पिटल में हो रहा है, ये जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सिंगापुर के एक बड़े बैंक DBS का एक कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। ये जानकारी मिलने के बाद बैंक को खाली कराना पड़ा और कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई। उस वक्त बैंक में एक फ्लोर पर 300 कर्मचारी काम कर रहे थे। इन सभी कर्मचारियों को आज बुधवार को छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। बैंक का दफ्तर मरीना बे फाइनेंशियल सेंटर में 43वीं मंजिल पर है। इससे पहले सिंगापुर में कोरोना वायरस के 47 मामले सामने आ चुके हैं। चीन के बाद कोरोना वायरस के मामलों की यह सबसे ज्यादा संख्या है। चीन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 44,000 तक पहुंच गए हैं और लगभग 20 देशों में इसके मामले पाए गए हैं। कोरोना वायरस के कारण चीन में अब तक 11,000 लोगों की जान जा चुकी है। बुधवार को दी गई जानकारी के मुताबिक चीन में पिछले 2 हफ्तों में अब तक के सबसे कम मामले सामने आए हैं। मंगलवार को 2015 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। देश का समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सकारात्मक होने की अर्थ मंत्रालय ने दी जानकारी। बजट के आकार 10% घटाने के बावजूद आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य यथावत, अर्थमंत्री डॉ युवराज खतिवाड़ा ने किया स्पष्ट। रेडियोधर्मी पदार्थ का नियमन संबंधी विधेयक 2076 प्रतिनिधि सभा ने किया पारित और सिंगापुर के एक बैंक में कार्यरत कर्मचारी में कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद बैंक में कार्यरत 300 कर्मचारियों को दी गई छुट्टी। इसी के साथ कल तक के लिए हिंदी समाचार बुलेटिन से दीजिए आज्ञा। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।